दिन भर आज 6 अगस्त दिन रविवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। उत्तर कोरिया पर ताजा प्रतिबंधों के बाद चीन ने कहा हालात बेहद नाजुक मोड़ पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा अमरनाथ यात्रियों पर हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ।
Once the investigation was started, it was revealed that Ismail Kodharu
और संग संग गुनगुनाओगे में आज बात संगीतकार अनिल विश्वास की।
अब दिल है न दिल के अरमां है, बस मैं हूँ मेरी तन्हाई।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उत्तर कोरिया से कहा है कि वो एक स्मार्ट फैसला ले और परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण बंद करें। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री री योंग हो से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये बात कही। नाइजीरिया से मिल रही खबरों के अनुसार देश के दक्षिण पूर्वी शहर ओनित्शा में एक चर्च पर हुए बंदूकधारियों ने हमला किया है, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। हमले में चर्च में प्रार्थना करने आए कई लोग भी घायल हुए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा है कि वो जान पा रहे हैं कि अमरीका रूस से बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। ये बात उन्होंने फिलीपींस के मनीला में हो रहे आसियान सम्मेलन में अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री जानना चाहते थे कि रूस पर अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के आरोपों के बाद अमरीका के रूस पर लगाए प्रतिबंधों के बारे में रूस क्या सोचता है। बीते सप्ताह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे।
Как вы знаете, есть механизм Рябков-Шеннон, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास Рябков-Шеннон मैकेनिज्म है। रूसी डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रेबकॉफ और अमरीकी विदेश मंत्री मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी थॉमस शेनन पहले ही इस मामले में कई बार मुलाकात कर चुके हैं। हमें लगता है कि ये एक सही तरीका है ताकि हम सभी विषयों पर और उलझे हुए मुद्दों पर भी ऐसे बात करना जारी रखें। लेकिन मुझे दुख है कि मुलाकातों का सिलसिला अब कम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका हमारे साथ बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। मुझे लगता है इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मानवाधिकार समूह मेडिसांस ऑफ फ्रंटिये ने इटली की उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि प्रवासियों को उतारने आई उनकी एक नाव को इटली के एक द्वीप लैम्पेदुसा के नज़दीक रुकने नहीं दिया गया था। संस्था के इटली शाखा के प्रमुख टोमासो फाब्री ने बीबीसी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में प्रवासियों को ले जाने के लिए संस्था की बचाव नौकाएं हमेशा चलती रहती हैं। हमारी नाव ने प्रवासियों को लाने ले जाने का अपना वही काम किया जो वो लैम्पेदुसा के नज़दीक हमेशा से करती आई है, संस्था के इटली शाखा के प्रमुख टोमासो फाब्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। खबरें मिल रही हैं कि वेनेजुएला के वेलेंसिया शहर में सेना के एक ठिकाने के पास हमला हुआ है। सत्ताधारी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के डियोस्तातो कैबेलियो ने इसे एक चरमपंथी हमला कहा है और कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। इधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सेना की पोशाक पहने कई जवान ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने देश में गणतंत्र की बहाली के लिए विद्रोह छेड़ दिया है। कीनिया के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने देश में चुनाव प्रचार के शांतिपूर्वक तरीके से खत्म होने के लिए देश के लोगों का धन्यवाद किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार यानी 8 अगस्त को चुनाव संपन्न होने के बाद भी लोग शांति बनाए रखेंगे। इससे पहले खबरें मिल रही थीं कि राजधानी नैरोबी में लोग डरे हुए हैं और हिंसा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और डरे हुए लोग खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आगामी चुनावों में उहुरू कियुयू संप्रदाय के केन्याटा माफ कीजिएगा के विरोध में राइला ओडिंगा खड़े हैं जो लोव संप्रदाय से हैं। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سے شام کی سبھا دن بھر سن رہے ہیں آپ سندیپ سونی کے ساتھ، ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com پر اور اپنے موبائل فون پر فیس بک پر بھی کاریکرم کا سیدھا پرسارن۔ آج کاریکرم کی شروعات دکشن پورو ایشیا کے اس دیش سے جس کے بارے میں کئی دشکوں تک دنیا بہت کم جانتی تھی، لیکن پرمانو ہتھیار سمپن راشٹر بننے کی اس کی مہتواکانکشا نے وشو کی بڑی بڑی طاقتوں کو سوچنے پر وش کر دیا ہے۔ جی ہاں، صحیح سمجھیں آپ، ہم بات کر رہے ہیں اتر کوریا کی، جس پر سنیکت راشٹر کے تازہ پرتبندھوں کے بعد چین نے کہا ہے کہ اتر کوریا کے معاملے میں حالات بے حد نازک موڑ پر ہیں، لیکن امریکہ اور اتر کوریا دونوں کے بیچ بات چیت کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ بی بی سی سمبادداتاؤں کے بھیجے بیورے کا سار سنیے مانسی داس سے۔
اتر کوریا پر سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کے تازہ پرتبندھوں کے بعد چین کے ودیش منتری وانگ یی نے اتر کوریا کے ودیش منتری ری یونگ ہو سے بات کی ہے۔ چین نے اتر کوریا سے کہا ہے کہ اسے پرمانو اور میسائل پریکشن بند کر دینے چاہیے۔ فلپینز کی راجدھانی منیلا میں ہو رہے ایک شیتریہ سمیلن میں چین کے ودیش منتری نے اتر کوریا کے ودیش منتری سے کہا کہ انہیں سنیکت راشٹر کے پرتبندھوں کا پالن کرنا چاہیے۔ حالانکہ چین کے ودیش منتری نے یہ نہیں بتایا کہ جواب میں اتر کوریا کے ودیش منتری نے کیا کہا۔ چین کے ودیش منتری وانگ یی کہہ رہے تھے کہ اتر کوریا کے ودیش منتری سے اچھے سے بات ہوئی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اتر کوریا کو اب شانت رہنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ اب اور پریکشن کر کے انتراشٹریہ سمودائے کو اکسانے کا کام نہ کریں۔ سنیکت راشٹر کے تازہ پرتبندھوں کی وجہ سے اتر کوریا سے ہونے والے نریات پر پابندی لگ گئی ہے۔ چین کے ودیش منتری کا کہنا ہے کہ اتر کوریا پر پرتبندھ لگانے کی ضرورت تھی، لیکن یہ پرتبندھ انتم لکش نہیں ہے اور اس معاملے میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کے ودیش منتری کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتر کوریا اور امریکہ دونوں سے کہا ہے کہ تناؤ کو اور نہ بڑھایا جائے، کیونکہ حالات اب بے حد نازک موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ چین کو امید ہے کہ نازک حالات ہونے کے باوجود بات چیت کی گنجائش بنی ہوئی ہے۔ بہرحال فلپینز کی راجدھانی منیلا میں جہاں چین اور اتر کوریا کے ودیش منتریوں کی بات چیت ہوئی ہے، اسی سمیلن میں امریکہ کے ودیش منتری ریکس ٹیلرسن بھی موجود ہیں۔ اس سمیلن میں اتر کوریا کا پرمانو کارکرم چرچا اور چنتا کا ایک بڑا مدعا لگ رہا ہے۔ کیا اس سمیلن میں امریکہ اور اتر کوریا کے ودیش منتری یا ان کے نمائندوں کی ملاقات ہوگی؟ ایسی کوئی یوجنا آدھیکارک طور پر فی الحال نہیں ہے۔
اتر کوریا پر تازہ پرتبندھوں کے بعد چین نے کہا حالت بے حد نازک موڑ پر، لیکن بات چیت کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ بی بی سی سمواداتاؤں کے بھیجے بیورے کا سار سنا رہی تھی مانسی داش۔ اور اس پورے گھٹنا کرم کے بیچ امریکہ جس تیزی سے کوٹ نیتی کی بساط بچھا رہا ہے، جانکار مانتے ہیں کہ ایک طرح کی سینس آف ارجنسی محسوس کی جا رہی ہے۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ اتر کوریا کے پرمانو کارکرم کے معاملے میں فوراً کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بی بی سی کے دکشن پورو ایشیا سمواددتا جوناتھن ہیڈ کا وشلیشن سنیے دنیش اپریتی سے۔
بی بی سی کے دکشن پورو ایشیا سمواددتا جوناتھن ہیڈ کا ماننا ہے کہ اتر کوریا میسائل تکنیک کے معاملے میں جس طرح دھیرے دھیرے لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کو ایشیا میں اپنی کوٹ نیتی میں پھرتی دکھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ امریکی ودیش منتری ریکس ٹیلرسن کی چھیتری سمیلن میں موجودگی شاید اسی بات کی اور اشارہ کرتی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس منچ پر اتر کوریا کی پرجور بھرتسنا کی جائے۔ امریکی ودیش منتری منیلا میں موجود روس اور چین کے ودیش منتریوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اتر کوریا کے ودیش منتری سے ملاقات کی سمبھاونا نہ کے برابر ہے۔ چین کے ودیش منتری نے اتر کوریا کے ودیش منتری سے بات بھلے ہی کی ہے، لیکن امریکہ چین سے یہ جاننا چاہے گا کہ اتر کوریا کے ساتھ اپنے آرتھک سمبندھوں میں کٹوتی کے لیے چین آخر کتنا اچھک ہے۔ ایشیا کے کئی دیشوں کو یہ لگتا ہے کہ اتر کوریا کے میسائل پریکشنوں میں ٹرمپ پرشاسن کی چنتا اور غصہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اس سے ٹکراؤ کی خطرناک استھتی پیدا ہو سکتی ہے۔
اتر کوریا کے ارد گرد جاری گھٹنا کرم پر بی بی سی کے دکشن پورو ایشیا سمواددتا جوناتھن ہیٹ کا وشلیشن سن رہے تھے ابھی آپ دنیش اپریتی سے۔
دن بھر شارٹ ویو 41، 31 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 7,565، 9,510، 9,460، 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पिछले महीने की 10 तारीख को अमरनाथ यात्रियों की एक बस पर हमला हुआ था, जिसमें 8 तीर्थयात्री मारे गए थे। उस हमले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज दावा किया है कि इसके लिए लश्कर ए तैयबा के चरमपंथी जिम्मेदार थे। इस खबर पर और जानकारी के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
पुलिस ने दावा किया है कि बीते 10 जुलाई को दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बटियोंगू में अमरनाथ यात्रियों की बस पर किया गया हमला लश्कर तैयबा के चरमपंथियों ने अंजाम दिया था। उस हमले में 8 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य 21 यात्री उस हमले में घायल हो गए थे। बस में सवार यात्री अमरनाथ गुफा से दर्शन करके वापस जम्मू की तरफ लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस हमले के पीछे चरमपंथी संगठन लश्कर तैयबा के 4 चरमपंथी शामिल हैं, जबकि 3 OGW या ओवरग्राउंड वर्कर्स ने भी इस हमले की साजिश रचाने में अहम भूमिका निभाई है, जो कि सिथानिया हैं, जिन्होंने लश्कर तैयबा के चरमपंथियों को हमला करने में कई तरह की मदद की थी। कश्मीर जोन के पुलिस IG मुनीर खान का कहना था,
Ismail Kod Haru, a Pakistani militant of Lashkar, along with 2 other Pakistani militants.
पुलिस के अनुसार इस हमले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 4 लोगों की तलाश अभी तक जारी है। पुलिस ने यह भी कहा है कि लश्कर तैयबा के चरमपंथी इस्माइल उर्फ हारून इस हमले का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने बताया है कि इस्माइल पाकिस्तानी नागरिक हैं। पुलिस का कहना था कि बीते दिनों अनंतनाग में लश्कर तैयबा के जो चरमपंथी मारे गए थे, उनकी यात्रा बस पर हमले में भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना था कि चरमपंथियों ने 9 जुलाई को ही हमले की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम की वजह से चरमपंथी ऐसा नहीं कर सके थे। पुलिस ने हमले के बाद मामले की जांच के लिए SIT या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया था। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। 29 जून से 5 अगस्त तक 2,59,536 यात्री अभी तक अमरनाथ गुफा से दर्शन करके लौट चुके हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और अब वक्त हो चला है हमारे उस साप्ताहिक कार्यक्रम का जिसका नाम है संग संग गुनगुनाओगे। संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ आज हम कर रहे हैं बात संगीतकार अनिल विश्वास की।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
अनिल विश्वास हिंदी फिल्म संगीत के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। बोलती फिल्मों का दौर जब से आरंभ हुआ और उसमें गीत संगीत के आगमन का रोचक इतिहास बस अभी बनना शुरू ही हुआ, ऐसे दौर में अनिल विश्वास का आगमन होता है। शुरुआती दिनों में हिंदी फिल्म संगीत को हम जिन लोगों से बनता हुआ देखते हैं, उनमें अनिल विश्वास के साथ फिरोज शाह मिस्त्री, मास्टर अली बख्श, जद्दन भाई, लल्लू भाई नायक, प्राण सुख नायक, ब्रजलाल वर्मा, वजीर खां, सुंदरदास भाटिया, गोविंद राव टेम्बे, केशव राव भोले, झंडे खां और सुरेश बाबू माणे को याद किया जा सकता है। इतने दिग्गज लोगों के बीच अनिल विश्वास हैं और अपनी पूरी एक बृहत्तर उपस्थिति से हम सबको चकित करते हैं।
धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बोल सो रहा है, मेरा बोल सो रहा है, शोर गुल न मचा,
अनिल विश्वास एक संस्था है, एक रोचक इतिहास और हिंदी फिल्म संगीत के लगभग भीष्म पितामह, एक ऐसा पुरोधा नायक जिन्होंने अपने सांगीतिक जीवन में ख्याल, ठुमरी, दादरा, वैष्णव कीर्तन, लोक संगीत, रवींद्र संगीत, काजी नजरुल इस्लाम का संगीत और तमाम तरीके की देशज अभिव्यक्तियां अंगीकार की थी। अनिल विश्वास के निर्देशन में जो गीत अभी बजकर गया उसकी ऐतिहासिकता यह है कि वह मुकेश के करियर का पहला गाना था जिसे अनिल विश्वास ने अपने समय में ब्रेक दिया था। अनिल विश्वास के संगीत से निबद्ध जितनी भी फिल्में हैं वो सब फिल्में अपनी महानता में याद की जा सकती हैं और उनकी जो पूरी तकनीकी है संगीत के लेकर के जो सूक्ष्म पकड़ और बारीक समझ है उन सब का इतिहास लिखा जाना चाहिए।
मुहब्बत तर्क की मैंने गले बांधी लिया, मैंने गले बांधी लिया, मैंने जमाने अब खुश हो जहर ये भी पी लिया, मैंने ये भी।
अनिल विश्वास एक बहुत अच्छे ढोलक और तबला वादक थे। उनके शुरुआती सांगीतिक प्रभावों में बंगाल बहुत मुखरता से मौजूद रहा है। एक तरफ वे बाउल संगीत से प्रेरित थे और बाउल संगीत की अपनी जो वैष्णवता है उसका नवाचार उन्होंने फिल्मी धुनों में किया था। किस्मत फिल्म के लिए पारुल घोष से जब उन्होंने पपीहा रे गवाया तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से उसमें वो बात नजर आती है जो बंगाल का वैभव वो फिल्मों में सृजित करना चाहते थे।
मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए।
अमीर बाई कर्नाटकी, पारुल घोष, जोहरा बाई अंबालावाली जैसी दिग्गज गायिकाओं के दौर में अनिल विश्वास ने लता मंगेशकर को एक प्रमुख गायिका के तौर पर उभरने में मदद दी। गजरे के लिए जब वो गीत बना रहे थे, कब आओगे बालमा, बरस बरस बदली भी बिखर गई, तो यही गीत उनका राज कपूर की फिल्मों में आगमन का स्रोत बना। इस गीत को सुनकर ही राज कपूर ने बरसात में लता मंगेशकर को प्लेबैक दिया था। और जब हम लता मंगेशकर के उस बनने वाले दौर को अनिल विश्वास के साथ देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि कैसे उन्होंने इतनी महान पार्श्व गायिका से अपने शुरुआती दिनों में ही बेहद सुंदर गीत गवा लिए। दो तीन गीतों को इसी क्रम में सुनना चाहिए। बेईमान तोरे नैनुआ के साथ तो अनिल विश्वास की ये उक्ति बहुत मशहूर है कि अब हम अपने गानों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें लता मंगेशकर मिल गई है।
रात जाए,
अनिल विश्वास के संगीत का एक पहलू रंगमंच संगीत और लोक संगीत से जुड़ाव भी था। उन्होंने कोरस गायन को इतनी प्रमुखता से स्थान दिया कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म संगीत में ऑर्केस्ट्रा और कोरस के प्रभाव का शुरुआती जो आगमन है वो अनिल विश्वास के कारण संभव हुआ, और जिसे उसी दौर में पंकज मलिक और तिमिर बरन ने अपने कामों से सजाया और समृद्ध किया। किस्मत का ही एक गीत जो अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने का गीत था और जिसके कोरस में स्वयं अनिल विश्वास और पंडित प्रदीप मौजूद थे, आज इतिहास बन चुका है। और मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म संगीत में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला संभवतः यह पहला गीत था।
आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
अनिल विश्वास एक्सपेरिमेंट में विश्वास करते थे। उन्होंने जो भी गीत बनाए उसमें इस बात का खास ख्याल रखा कि दूसरी आवाजों में भी वो चीज सुंदर ढंग से उभर कर आए। उन्होंने अपनी पत्नी मीना कपूर से कुछ सुंदर गीत गवाए और लता जी के साथ मीना कपूर के सहकार के कुछ सुंदर गीत सृजित किए। एक दो गीतों की वानगी से ये बात समझी जा सकती है कि अनिल विश्वास का संगीत चितेरा कितना समृद्ध था और किस तरह वो नई नई आवाजों के लिए प्रेरक का काम करता था। चार दिल चार राहें और सौतेला भाई के लिए अनिल विश्वास ने दो मुजरा गीत भी बनाए थे, और वो दोनों मुजरा गीत यहाँ पर इसलिए याद किए जाने चाहिए क्योंकि उनकी जो स्टाइल है, जो शैली है, वो बैठ की महफिल की शैली है। जिस तरह से पारंपरिक ढंग से कोठों पर होने वाला संगीत रचा जाता था, उसी ढंग का तरन्नुम पैदा करता हुआ ये मुजरा सुनना चाहिए। अनिल विश्वास के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा, एक ऐसे संगीत गुरु के बारे में जो कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने अपने संगीत से जो एक वैष्णवता का आंगन रचा, या जो उन्होंने बंगाल सृजित किया, या जो कोरस के माध्यम से संगीत को उन्होंने कोरस गाने वालियों के लिए भी एक नए अंदाज में बिखेरा, वो सब कुछ अब इतिहास है। अनिल विश्वास जिन्होंने बाद में दूरदर्शन के लिए हम लोग सीरियल का भी साउंड ट्रैक तैयार किया और तमाम सारे वृंद गानों को अपना हुनर दिया, ऐसे संगीत पुरोधा को आज के समय में याद करना उस गौरवमयी सांगीतिक यात्रा को याद करने की तरह है जब हमारे सामने जोहराबाई अम्बाला वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, पारुल घोष, मुकेश और लता मंगेशकर जैसे पार्श्व गायिकाएं और गायक मौजूद थे। चलते हुए हमदर्द फिल्म के इस गीत से हम विदा लेते हैं जिसमें शास्त्रीयता पूरी प्रखरता के साथ शिखर पर मौजूद है।
ऋतु आए ऋतु जाए सखी मन के मीत न आए, ऋतु आए ऋतु जाए सखी मन के मीत न आए, ऋतु आए।
संग संग गुनगुनाओ के बाद हमारे कुछ उन श्रोताओं का जिक्र जो सुबह शाम हमारे संग संग दोनों प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इंदर गोलूवाला, मुकेश आर यादव, अमर नईमुद्दीन, प्रबुद्ध कश्यप, साहनी मुकुल, हुकुम मेघवाल, अंजनी कुमार सिंह, ये वो नाम है जो मैं बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर इस समय देख पा रहा हूँ, जगदीश भाई, हेमंत पांडे, संतोष त्रिवेदी, रहमान खान, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। और अब वक्त हो चला है खेल समाचारों का। आज भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को एक पारी और 73 रन से हरा दिया है।
तिरपन रनों से
हरा दिया है। तो पूरी रिपोर्ट आदेश जी।
जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि भारत ने श्रीलंका को सिहली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे ही दिन आज चायकाल से ठीक पहले एक पारी और 53 रन से हरा दिया। पहली पारी के आधार पर 439 रन से पिछड़कर फॉलो ऑन को मजबूर श्रीलंका की दूसरी पारी 386 रन पर समाप्त हुई। हालांकि श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने 141 रन बनाए और वो एक छोर को बहुत देर तक संभाले रहे और इसके अलावा कुशल मैंडिस ने भी 110 रनों की कल शतकीय पारी खेली थी जिसकी वजह से श्रीलंका पूरी तरह से ढहने से बची। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा एंजेलो मैथ्यूज ने 36 और विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला ने 31 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की घूमती गेंदों का सामना नहीं कर सके। रविंद्र जडेजा ने 152 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उन्होंने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पहली पारी में नाबाद 70 रन बनाए थे। अंततः उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उल्लेखनीय कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 622 रन बनाए थे और पारी समाप्ति की घोषणा की थी। उस पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 133 और अजिंक्य रहाणे ने भी 132 रनों की शतकीय पारी खेलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पहली पारी केवल 183 रन पर सिमट गई। इस टेस्ट मैच को जीतने के साथ ही भारत ने 3 टेस्ट मैचों की मौजूदा सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 12 अगस्त से पल्लेकल में खेला जाएगा और श्रीलंका के खिलाफ जो भारत की ये जीत है, दरअसल 2 वर्षों में ही भारत ने श्रीलंका को लगातार दूसरी बार सीरीज में एक तरह से मात दी है, क्योंकि अब भारत के पास 2-0 की जो अजेय बढ़त है, इससे पहले साल 2015 में जब विराट कोहली की कप्तानी में ही भारतीय टीम श्रीलंका गई थी तो 22 साल बाद लंका में जीत का डंका बजा था। तो आप सोच सकते हैं कि 2 सालों में ही अगर 2 सीरीज भारत ने जीती है तो अपनी ही ज़मीन पर अब श्रीलंका कितनी कमज़ोर है और भारतीय टीम विराट कोहली की कप्तानी में कितना ज़बरदस्त खेल दिखा रही है।
खेल तो ज़बरदस्त दिखा रही है, लेकिन ये रविंद्र जडेजा क्या कर बैठे, मैन ऑफ द मैच भी बने और जेब भी कट गई।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल शाम होते होते ऐसा समाचार आया कि रविंद्र जडेजा अब अगले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जब श्रीलंकाई पारी का 58वां ओवर चल रहा था तब रविंद्र जडेजा अपनी ही गेंद पर एक ऐसा थ्रो कर बैठे जिसे खतरनाक माना गया। हालांकि उन्हें थ्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि श्रीलंकाई बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने आराम से उस गेंद को खेला था, लेकिन शायद जोश में ज़्यादा और होश में कम रविंद्र जडेजा ने एक ऐसा थ्रो किया जिसे बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया करुणारत्ने ने शरीर पर लगने से। और आज का जब मैच समाप्त हुआ तब मैच रेफरी को ऐसा लगा कि ये खतरनाक था, न केवल उन पर एक मैच का निलंबन लगा बल्कि उन्हें अगले 50% फीस भी काटी गई। इस पूरे मामले को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन कहते हैं,
जहां तक ये मैच का सस्पेंशन का सवाल है तो शायद उन्हें भी थोड़ा तवज्जो देना चाहिए अपने बिहेवियर पे, क्योंकि ज्यादा उत्साहित हो जाए या ज्यादा जोश में आ जाए तो गलतियां कर लेते हैं और आजकल आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट काफी सख्त है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जानबूझ के मारने की कोशिश की होगी बल्लेबाज के पास, लेकिन अगर आईसीसी के मैच रेफरी के नजरिए से ये डेंजरस है तो फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का क्लॉज है ब्रीच ऑफ कंडक्ट।
और संदीप, अब ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को अगला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल जाएगा। वहीं इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज तीसरे दिन थोड़ी देर पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 130 रन बना लिए थे।
खेल समाचार सुने आपने अभी आदेश कुमार गुप्त से और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उत्तर कोरिया से कहा है कि वो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण बंद करें। नाइजीरिया में देश के दक्षिण पूर्वी शहर ओनित्शा में एक चर्च पर बंदूकधारियों ने हमला किया है जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा है कि वो जान पा रहे हैं कि अमरीका रूस से बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। खबरें मिल रही हैं कि वेनेजुएला के वेलेंसिया शहर में सेना के एक ठिकाने के पास हमला हुआ है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुने आपने मानसी दास से और कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे, हमें आपसे जोड़ रहे थे शाकिर आलम। दिन भर में आज इतना ही, हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप, भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति।